इशिका पुलिस स्टेशन में समीर और उसकी माँ के खिलाफ गवाही देने के लिए आई हुई थी। उसने सारी बातें पुलिस वाले को बता दी थी। जब इशिका वहाँ से जाने को हुई तब पुलिस वाले ने उसे सम्मान देने की बात कही। वो सबके सामने इशिका के इस कारनामे की घोषणा करना चाहता था। जैसे ही इशिका ने पुलिस वाले के मुँह से सबके सामने घोषणा देने की बात सुनी वो जल्दी से बोली, अरे नहीं सर, इस तरह के अनाउंसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, बिल्कुल है, आजकल की यंग जेनरेशन को आप लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप भी इतनी यंग हैं, सच कहूँ तो आपकी जगह कोई और होता तो उन सब चीज़ों को शूट करके सोशल मीडिया पर डालकर फेमस होने का सोचता, पर आपने उसकी हेल्प की। आज की जेनरेशन को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर के समझाने पर इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर और नाम वहाँ उस फॉर्म में लिख दीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूँगा। प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिएगा मिस सिंघानिया, इंस्पेक्टर ने कहा और इशिका के हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया। इशिका अपनी डिटेल्स भरने लगी। जब इशिका और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे तब कांस्टेबल ने आवाज़ लगाकर कहा, सर ये लोग भी कियारा मित्तल के केस से जुड़े हुए हैं और इनकी गवाही भी ज़रूरी है, आप प्लीज़ स्टेटमेंट लेने के लिए इन्हें भी अंदर बुला लीजिए। कांस्टेबल ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर आवाज़ लगाई तो आयशा और राघव का ध्यान उस ओर चला गया। इशिका को देखकर राघव के चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव थे। वो लड़की जो उसे जानी पहचानी लग रही थी वो भी उस दिन मौजूद थी, ये जानकर वो चौंक गया था। इशिका ने एक नज़र उनकी तरफ डाली, वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। आयशा तो उसे वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, ऊपर से राघव भी नक्श को ही सपोर्ट कर रहा था। ये सोचकर इशिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में बुला लूँगा, इंस्पेक्टर ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा। जब राघव और आयशा खड़े थे तब उत्सुकतावश राघव ने आयशा से पूछा, क्या ये लड़की भी उस दिन मौजूद थी जब कियारा के साथ वो सब हुआ था? नक्श वहीं पर था, उसने आयशा की तरफ देखा। उसके दिल में अचानक थोड़ा सा डर पैदा हुआ, ये सोचकर कि अगर इशिका ने भी उस दिन कियारा को बचाने में मदद की थी तो फिर वो अभिमन्यु से कैसे जीतेगा। आयशा ने गुस्से से इशिका की तरफ देखा और फिर जवाब में बोली, हाँ ये मेरी बहन है और उस दिन वहीं पर मौजूद थी। एक्चुअली कियारा ने पहले इशिका से ही हेल्प मांगी थी, लेकिन इशिका ने बहुत ही बेरहमी से ये कहकर टाल दिया था कि अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। आप चाहें तो नक्श से पूछ सकते हैं, वो ऐसी ही है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। नक्श ने भी आयशा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, इशिका ऐसी ही है, उसे बस खुद से मतलब है। आयशा ने आगे कहा, उसने तो मुझे भी कॉल करने से रोका था, उसने कहा था कि जो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुनते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, पर मैं अलग हूँ, मुझसे दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता है। बोलते हुए आयशा ने राघव के चेहरे की तरफ देखा जो सर्द होने लगा था। उसने राघव को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, कियारा उस वक्त अपने होश में नहीं थी तो उसने इशिका की बातों को दिल से नहीं लगाया होगा। राघव को आयशा की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इस वक्त उसका चेहरा सर्द होते जा रहा था, उसे बार बार कियारा की बातें याद आ रही थी। जब कियारा होश में आई तो उसके मुंह से यही निकला था कि शायद मुझ जैसे बेवकूफ लोगों को जीने का कोई हक नहीं जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुना हो। राघव ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली थी। वो अपने मन में बोला, मुझे लगा कियारा वो सब इस वजह से बोल रही है क्योंकि समीर ने उसे हर्ट किया था, लेकिन वो इस वजह से हर्ट थी क्योंकि इस लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी और उसे ये सब बातें सुनाई थी। आयशा की बातें सुनकर अचानक नक्श के सीने में दर्द सा उठा। वो अपने मन में बोला, इशिका के लिए प्यार टाइम वेस्ट है, क्या इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में मुझे इग्नोर करती रहती थी? मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन कभी उसने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो इशिका? अचानक नक्श की सांसें तेज हो गई थीं। उसने आयशा से कहा, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, मुझे थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना स्टेटमेंट देने के बाद आ जाना। नक्श ने आयशा के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और जल्दी से बाहर चला गया। उसके लिए इशिका को देख पाना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। नक्श के जाते ही आयशा ने तुरंत राघव से कहा, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप दिल्ली जाने के बारे में कब का सोच रहे हैं? आपकी बहन ठीक हो गई क्या? मैंने सुना है दिल्ली के हॉस्पिटल्स गोवा था हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ की आरा को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। राघव जो अब तक इशिका को घूर रहा था उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। वो जवाब में बोला, हाँ बस कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे और फिर परसों डॉक्टर से बात करके मैं कियारा को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा। राघव नहीं चाहता था कि कियारा वहां रुककर एक बार भी मिस सिंघानिया यानी आयशा से मिले, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे वहां से ले जाना चाहता था। वहीं आयशा ने भी राहत की सांस ली, उसे डर था कि अगर राघव मित्तल ज्यादा दिनों तक गोवा में रहा तो उसके सामने इशिका की सच्चाई आ ही जाएगी, ऐसे में राघव का वहां से जल्द चले जाना ही ठीक था। जल्द ही उन्हें गवाही देने के लिए अंदर बुला लिया गया था। वहीं इशिका भी बाहर निकल गई थी। वो बाहर खड़ी होकर अपनी कार के आने का इंतजार कर रही थी। इशिका वहां खड़ी थी तभी उसके कानों में नक्श की आवाज सुनाई दी। नक्श उसके पास आते हुए बोला, इशिका मुझे नहीं पता था कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। अच्छी बात है कि तुमने अपनी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस की, लेकिन तुम जो कंपनी खड़ी करने की सोच रही हो वो एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के बिना नहीं हो पाएगी। बिना पैसों के तुम अपनी कंपनी को एक साल तक भी नहीं चला पाओगी। इशिका ने उसकी तरफ बोरियत भरे लहजे में देखा और फिर कोई जवाब नहीं दिया। इशिका का इस तरह इग्नोर करना नक्श से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। यूनिवर्सिटी में इशिका सबको ऐसे ही इग्नोर करती थी, लेकिन उसने नक्श के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखा क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझती थी। लेकिन आज इशिका सबकी तरह उसे भी इग्नोर कर रही थी। आखिर में हार मानकर नक्श ने कहा, तुम अपनी जिद के चक्कर में एक बहुत बड़ा मौका गवा रही हो। कौन सा मौका? इशिका ने हैरानी से पूछा। नक्श ने उसे देखकर सिर हिला दिया था। इशिका ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसकी गाड़ी आ गई थी। वैसे भी नक्श की बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। इशिका वहां नक्श से दूर जा रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो उसे हमेशा के लिए खुद से दूर भेज रहा है। इशिका के जाते ही नक्श ने खुद से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो इशिका सिंघानिया, लेकिन मैं एक नाजायज लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। नक्श इशिका को नाजायज औलाद बोलकर खुद को मन ही मन तसल्ली दे रहा था। हालांकि इशिका के दूर जाने का गम उसे कितना था इस बात को वो अच्छे से समझता था। वहीं आयशा और राघव भी बयान देकर बाहर आ गए थे। उन्हें देखते ही नक्श उनके पास गया। जाने से पहले राघव ने हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश, मेरी वजह से आप दोनों की डेट खराब हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मित्तल, मैं आपके काम आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मित्तल? आयशा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस मिस्टर राजवंश के साथ मीटिंग है, आज ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाएंगे और फिर दोनों कंपनी साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करेगी।
उसकी बात सुनकर नक्श ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वहाँ कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, वरना मैं भी आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मीटिंग में मौजूद रहता। उसकी बात सुनकर राघव का चेहरा सख्त हो गया था। अभिमन्यु को कहने के बावजूद भी उसने नक्श को प्रमोट नहीं किया था। तो वहीं आयशा ने जल्दी से कहा, क्या कहा तुमने? अभी तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है क्या? मेरी तो मिस्टर मित्तल से इस बारे में बात हुई थी, फिर तुम्हारा प्रमोशन कैसे नहीं हुआ? क्या उन्होंने अभिमन्यु चाचू से इस बारे में बात नहीं की थी? राघव उनके सामने ही था, इस वजह से वो बातों की बातों में उसे अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। नक्श ने हताश स्वर में जवाब देते हुए कहा, चाचू ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही वो मुझे प्रमोट करेंगे, वो बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वो भूल ना जाएं। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो राघव से बोली, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा ही रहे हैं तो प्लीज अभिमन्यु चाचू को इस बारे में याद दिला देना कि उन्हें नक्श को प्रमोट करना है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। बिजनेस करते हुए राघव को ऐसे लोग पहले भी मिले थे जो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आयशा और नक्श उसका इस तरह से फायदा उठाएंगे। उसे कहीं ना कहीं कियारा पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो जिसे अपनी लाइफ सेवियर या अपनी दोस्त समझने लगी थी, वो किस तरह उसकी जान बचाने के चक्कर में राघव का फायदा उठा रही थी। ठीक है, मैं याद दिला दूंगा, राघव ने बहुत ही रूखे तरीके से जवाब दिया। उन दोनों से बात होने के बाद राघव तुरंत राजवंश एम्पायर जाने के लिए निकल गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना कोई मामूली बात नहीं थी। वहां राजवंश ग्रुप और मित्तल ग्रुप के इम्पॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे और वो किसी बड़ी बिजनेस सेरेमनी की तरह था। एक बड़ी सी टेबल के आमने सामने अभिमन्यु और राघव बैठे हुए थे, जबकि उनके आसपास उनकी कंपनी में काम करने वाले इम्पॉर्टेंट पोजिशन के लोग थे। इतने लोगों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। अभिमन्यु ने पहले जरूरी फॉर्मैलिटी पूरी की। जब वो पेपर साइन करने लगा तो उसने देखा कि वहां पर राघव के साइन नहीं किए हुए थे। ये देखकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से राघव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, क्या आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई शक है क्या? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है मिस्टर राजवंश, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि जब तक मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन मुझे मिस्टर नक्श राजवंश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और राघव की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता मिस्टर मित्तल आप राजवंश एम्पायर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप ये तय नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट पर कौन काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, राघव ने नरमी से जवाब दिया। मुझे बस मिस्टर नक्श राजवंश काफी टैलेंटेड लगे। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें टैलेंटेड लोग इन्वॉल्व हों। मैं यहाँ पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। हालांकि राघव को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि राजवंश कंपायर के कौन से लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन आयशा के प्रेशराइज करने पर राघव को सबके सामने वो सब कहना पड़ रहा था। बातों ही बातों में राघव ने सबको इस बात का एहसास कर दिया था कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करेगा। अचानक ही वहां का माहौल एकदम गर्म हो गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो पृथ्वी को आ रहा था। नक्श ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए। उसने तो अपनी एजुकेशन भी थोड़े टाइम पहले ही पूरी की थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी पोजीशन क्या सोच कर दी जा रही थी। अभिमन्यु सख्त निगाहों से राघव को घूर रहा था। राघव ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा, कहा ना मिस्टर राजवंश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर किसी को अभिमन्यु के फैसले का इंतजार था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राघव मित्तल को क्या हो गया था जो वो सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद एक अजीब शर्त रख रहा था। हालांकि अभिमन्यु के लिए किसी को भी प्रमोट करना बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस तरह एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को बीच में अटका कर रखना राघव की इमेज को खराब कर रहा था। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था और सबको यही लग रहा था कि अभिमन्यु को मजबूरी में ही सही लेकिन हाँ कहनी पड़ेगी। अभिमन्यु ने अपनी भौहें उठाकर तेज आवाज में कहा, अगर मैं आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा तो क्या मिस्टर राघव मित्तल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? अभिमन्यु के कहते ही सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सबको लगा कि अभिमन्यु मान जाएगा, क्योंकि उसके ना कहने पर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का सारा बोझ उस पर आएगा। अभिमन्यु ने पूरे मामले को बदलकर राघव पर डाल दिया था। राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के सीनियर एम्प्लॉयज अपने अपने बॉस को समझाने लगे। कोई अभिमन्यु को गलत समझ रहा था तो कोई राघव को। ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए कितना जरूरी था वो अच्छे से जानते थे। ऐसे में उन दोनों की जिद सब बर्बाद कर रही थी। अब ये देखना बाकी था कि कौन पहले हार मानने वाला था। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु अपने घुटने टेकेगा या राघव? अच्छा, आपको कहानी का ये ट्विस्ट और टर्न अच्छा तो लग रहा है ना? प्लीज समीक्षा में लिखते रहा करो यार, थोड़ी तारीफ करो, अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।